Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Pushpadan's Kaivalya Upanishad in Hindi, presented by Swami Acharya Swami Sri Bhagavatanandji. Thank you. Om Namah Shivaya.
Jahan jo vastu nahi hai wo hai dikh raha hai. और जो है उसे नहीं वो न दिखा उसी को माया कहते हैं। रतेर्थम यत प्रतीयत न प्रियेत चात्मनी तर विद्यादात्मना माया, उसको माया जानो अविद्या जानो। तो अब फिर आइए जरा, सो अक्षरा, वो अक्षर है, अक्षर माने संपूर्ण क्षर प्राणी मात्र को जानने वाला। पांच महाभूत हैं, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, इन्हीं पांच महाभूतों का ये सब खेल दिखाई दे रहा। नाम रूप में जो कुछ भी दिख रहा है वो माटी पानी आग हवा और ये आकाश में विराजमान है। ये पांच महाभूतों का खेल है। अरे ये बात अगर समझ में आ जाए, कह रहे ये पांच महाभूतों का खेल है नहीं है तो मैं ही, मेरा ही आत्म प्रकाश हो रहा, मेरा ही प्रतिबिंबन है, ये बात समझ में आ जाए तो तद्रूप हो जाए। जैसे बृहदारण्यक उपनिषद में देवता लोग तद्रूप बन गए, वामदेव तद्रूप बन गए, मनुष्यों ने जिन्होंने जाना वो तद्रूप हो गए, बस फिक्र कट जाए और जो जैसे काम कर रहे हो वैसे ही बने रहो, उसमें कोई अंतर नहीं पड़ेगा। न कहीं समझ में आवे कि गेरू कपड़ा पहनना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। काम धाम सब वैसे ही हो, बस इतनी बात समझ में आ जाए कि अरे मैं तो इस क्षर पदार्थ को जानने वाला हूं। जानने वाला अक्षर होता है और जो जाना जाता है वो क्षर होता है। और यस्माद् क्षरमतीतो हम अक्षरादपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथिता पुरुषोत्तमः। और क्षर और अक्षर दोनों से परे पुरुषोत्तम। तो संस्कृत में तीन प्रकार होते हैं पुरुष के, एक प्रथम पुरुष, एक मध्यम पुरुष और एक उत्तम पुरुष। तो उत्तम पुरुष को अहम बोलते हैं, मैं, और प्रथम पुरुष को सातौते, मध्यम पुरुष तुम्हारे लिए तुम, युवाम युवम। तो अब जरा विचार ये करना है कि जब हमारे जीवन में क्षर को हम देखते हैं कि ये अरे कल खंडहर थे, आज वहां भव्य भवन खड़े हैं, और जहां भव्य भवन थे वहां खंडार है, विनाशी चीजों को देखते हैं, उसी विनाशी में ही अविनाशी छिपा हुआ है। देख ले जब समझ में आ जाए तो, विनाशी में अविनाशी है, प्रभु तुम सब पूर्ववासी हो। ये बात समझ में आ जाए कि ये विनाशी पदार्थ दिखता ही है चेतन की बदौलत, हमारी वजह या अक्षर की बदौलत। अक्षर कूटस्थ जीवात्मा है और ये कहता है कि मेरा है, ये खेत मेरा है। इस शरीर को खेत भी बताया गया, इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रमित्यवधीयते। ये खेत है, खेत, आ खेत का मालिक जो बनता है वो क्षेत्रज्ञ हो गया, वो खेत का मालिक। तो जो क्षेत्रज्ञ है, जो खेत का मालिक है या मालिक बनता है, तो जो मालिक बनता है उससे भी वो, उसको भी जो जानने वाला है वो हुआ यस्माद् क्षरमतीतो हम अक्षरादपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथिता पुरुषोत्तमः। वो उत्तम पुरुष हुआ, अहम हुआ, अब जरा विचार करो, जैसे अभी आपने सुना कि जिनको ये सिनेमा का पर्दा में दिखने वाला पदार्थ सही लगता है, आग जल रही है मालूम पड़ा, रही आग जल रही, उनको भ्रम होता है, वे डरते हैं, और जिनको ये मालूम है कि दिखता तो है नहीं, है पर्दा ही, ऐसे माया के पर्दा पर, प्रकृति के पर्दा पर ये सब दिख रहा है। तो ये जो क्षर है, उस क्षर और अक्षर के परे जो है वो स्वराट है, स्वेद राजते इति स्वराट, अपने आप प्रकाशित हो रहा है, उसको बताने के लिए कोई जरूरत नहीं। जैसे आपने पिछले मंत्र में समस्त साक्षी सुना था, समस्त साक्षिम तमसप परस्तात, जो अंधकार अज्ञान के परे है सबका साक्षी है, साक्षात प्रसिद्ध साक्षी, जिसको किसी इंस्ट्रूमेंट की जरूरत न पड़े जानने में। जैसे हम ये पुस्तक देखें तो तीन चीजें की जरूरत पड़ेगी, आंख की जरूरत पड़ेगी, अध्यात्म इंद्रियों की जरूरत है, और पुस्तक माने विषय अधिभूत की जरूरत पड़ेगी, और अधिदैव प्रकाश की जरूरत पड़ेगी, बिना प्रकाश के नहीं दिखेगी। तीन में से एक चीज अगर गड़बड़ होगी तो नहीं दिखेगा। पुस्तक न हो तो देखोगे किसको, प्रमेय वस्तु है, और इंद्रिय न हो तो वो कैसे दिखे, आप प्रकाश बीच में न हो तो अभी नहीं दिखेगा। तीनों चीजें हों तो तीनों चीजें सापेक्ष हुई, और जो सापेक्ष होता है वो क्षरणशील होता है, विनाशी होता है, नश्वर होता है। तो जिस पदार्थ को आपने स्वयं नश्वर जान लिया, जैसे अपनी देह को ले, सबसे निकट शरीर है, इस शरीर को आपने जान लिया कि नश्वर है, क्यों, अरे भाई कितने शरीर बदल गए जब से पैदा हुए तब से अब तक, प्रत्येक 5-7 वर्ष में बदलता ही चला गया, तो नश्वर हो गया। और जो नश्वर होता है उसमें 6 चीजें होती हैं, अस्थि जायते वर्धते विपरिणमते अपक्षीयते और नश्यते। ये जो 6 चीजें हैं, पैदा हुई है, घड़ा बना मिट्टी में बना, फिर जरा वो संस्कारित हुआ, संस्कारित होने के बाद व्यवहार में आया। देखिए, एक घड़ा पे दीपक धरा था, मंदिर में जग रहा था, तो प्रेमपुरी का कोई सत्संगी जा रहा था, उसने कहा कि देखो कितना बढ़िया इसका भाग्य है, मंदिर में रखा है, गंगा जल भरा है, ऊपर से दीपक जग रहा। घड़े ने कहा सुनो, जरा हमारी कहानी सुनो, कैसे हम बने, ये घड़ा ही है शरीर। कोदारेण विदारिता बसुमती पश्चात खरारोहणम, सबसे पहले हम तालाब में थे, घड़ा बता रहा, तालाब में से फावड़ा चलाए गए, कोदारेण विदारता, और फावड़ा चला के हमको इकट्ठा किया गया और गधे पे लाद दिया। अब आप सोचो गधे पे लादना कितना खराब होता है, आप लोग तो कभी बैठे नहीं होंगे, गधे पे बैठना अच्छा नहीं होता, तो वो लाद दिया गया हमें गधे पर। तो हमने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, फावड़ा भी चल गया, गधे पे लद गए, अब शायद कुशलता हो। तो गधा वो दरवाजे पे गया और उसको लादी पटक दी गई, तो मैं बहुत चिल्लाया, लेकिन मेरी चिल्लाने को सुनता कौन है। सो सब परिवार भर का आया कुंभकार का, और सब लोग खोदने लगे हमको पैर से। तो मैंने कहा कि भैया पहले फौड़ा चला, फिर गधे पे लादा गया, फिर पटका गया, अब फिर रौंदा जा रहा, अब हमारी क्या दुर्दशा होगी ये समझ में नहीं आता। इसके बाद कुशलता तो दूर रही, चक्का पर चढ़ा दिया गया। और चक्र पर जब मैं नाचने लगा तो गला ही काट दिया। एक डोरा सा रहता है उसे गला काट देते। जब गला काट दिया तो मैंने कहा मर गया। लेकिन उसने कुम्हार ने बड़े ढंग से बना लिया। अब हमने कहा अब ठीक है, अब आराम में रहेंगे, अब कोई बात नहीं। और ये दहकती हुई ज्वाला थी हवा की, उसी में धर दिया गया। मैं बहुत चिल्लाया रोया लेकिन कौन सुनता है। दहकती हुई ज्वाला में धर दिया गया। अब हमारे बहुत से भाई तो तालाब में ही रह गए, कुछ गधा पे गिर पड़े, कुछ टूट फूट गए कुछ। लेकिन मैंने कहा आप देखो होता क्या है। हवा में से आज निकाला गया तो एक पुजारिन आई नई बहू, सो टक टक कर रही थी उंगली से। मैंने कहा अब तुम हमें क्या ठोक रही हो, हम तो ठुकते ही ठुकते जिंदगी में आए हैं, तुम्हारी उंगलियां और टूट जाएंगी। उसने कहा कि मैं इसलिए नहीं ठोक रही हूं कि उंगली टूट जाएंगी, इसलिए ठोक रही हूं कि अब भी कच्चे तो नहीं हो, अब भी पक गए कि नहीं। तो साधक का जीवन जो है वो इसी प्रकार का होता है। कच्चापना अगर रहा तो फिर गड़बड़ है, तो इसलिए तो फिर वो स्वराट नहीं बन सकता। स्वयं प्रकाशित जिसमें किसी की आवश्यकता न हो, किसी इंस्ट्रूमेंट की आवश्यकता न हो, जैसे किताब को देखने के लिए आंख चाहिए, प्रकाश चाहिए और पुस्तक चाहिए, और अपने आत्मा को जानने के लिए कुछ नहीं चाहिए। वो तो जाने ही जाना, वो तो है ही, वो तो मैं ही हूं। तो अपने को जानने के लिए जिसको किसी की जरूरत ना हो उसको स्वराट बोलते हैं। तो सोक्षरा परम स्वराट और सा विष्णु सा प्राण, वही विष्णु वही प्राण। विष्णु माने सर्वव्यापक, सर्वव्यापक पदार्थ को विष्णु कहते हैं। वेविष्टित विष्णु व्याकरण में विश्री धातु है और उसका वेविष्टि बनता है, जो सब में व्याप्त है। और कल आपने सुना था जो व्यापक पदार्थ होता है, सब में व्याप्त होता है, उसका कोई आकार नहीं होता है, वो तो निराकार होता है, सत्य है। उसका आकार कैसे बनेगा? इसलिए वो विष्णु सर्वव्यापक, सब में समाया है। इधर ना उधर है तुम्ही में समाया, इधर ना मगर तूने अब तक नहीं जान पाया, मगर तूने आंखों का आंख और हाथों का हाथ है, आंखों पैरों का पैर और कानों का कान है, पैरों का प्राणों का पंखा उसी ने डुलाया, प्राणों का मगर तूने अब तक नहीं जान पाया, मगर तू इधर ना उधर है तुम्ही में समाया, इधर ना मगर तूने अब तक नहीं जान पाया, मगर तू तूने अभी तक पता ही नहीं लगाया वही है, वही सर्वव्यापक पदार्थ है, सब विष्णु सब प्राण। प्राण में अन्न धातु प्राउपसर्ग है, प्राणिति प्राण, सबको चेष्टा देने वाला। जैसे हम इसको उठाते हैं ना, तो हाथ में ताकत होगी तब ना उठेगा, इसी को प्राण कहते हैं। प्राणस्य प्राण, वो प्राणों का भी प्राण है। तो प्राण माने चेष्टा, व्यवहार, मूवमेंट्स, जो शरीर के गत चेष्टाएं हैं, व्यवहार होता है, इंद्रिय अपना अपना काम करती है, वो उसी की वजह से करती है। प्राण है, चेष्टा है, उसी को ऑक्सीजन कहते हैं, वायु, प्राण, चेष्टा। तो ये जो चेष्टाएं दुनिया में हो रही हैं, वो कहते हैं उसी की बदौलत हो रही हैं। आप जरा सोचो, मुर्दा में तो नहीं होगी ना, उसका कनेक्शन कट जाता है। मेन पावर हाउस से कनेक्शन जब कट गया तो कुछ नहीं। तो देखिए, पावर हाउस से कनेक्शन आता है, और आता कहाँ है, आपके आश्रम के पास वाले खंभे में। आश्रम के पास वाला जो खंभा होता, उसी बिजली आपके घर में जाती है। इसी प्रकार से पावर हाउस तो एक है, और वहां से पावर हाउस से शक्ति आकर के ए संत महात्मा, ऋषि मुनि महात्मा, ये आश्रम के पास वाला खंभा है, वहां से कनेक्शन लिया जाता है, तब आपके घर में प्रकाश होता है। तो वो जो चेष्टा होती है, प्रकाश होता है, कार्य होता है, वो प्राण का काम है। तो कहते हैं वो चेष्टा उसी की बदौलत हो रही है। एक बड़ी भारी मशीन है, और उस मशीन में आटा की भी चक्की है, स्पेलर भी है, रुई भी धुनी जाती है, बहुत से काम हो रहे हैं। अब मेन स्विच ऑन किया तो गेहूं डाला था तो आटा निकलने लगा, राई डाली थी तो तेल निकलने लगा, जो जिसमें डाला था सो सब निकलने लगा। इसी प्रकार से मेन स्विच ऑन किया, मुंह बोलने लगा, कान सुनने लगा, आंख देखने लगी, ये सब अपने आप इंद्रियां काम करने लगती, जिसकी बदौलत, उसी को यहां प्राण कहा गया। सा शिवा सा प्राणः, वही शिव तत्व है और वही प्राण तत्व है, वही विष्णु तत्व है, उसमें कोई अंतर नहीं है। और वही कालाग्नि है, काल माने समय, कालोष्मलोक क्षयकृत प्रवृत्ता, वही काल, काल माने समय, घंटा, मिनट, सेकेंड, घड़ी, पल, विपल, ये जो हम लोग लगाते हैं, फिर धीरे धीरे 24 घंटा, 24 घंटे के बाद फिर 7 दिन, फिर 7 दिन के बाद 2 पक्ष, 6 ऋतुएं, गर्मी, वर्षा, जाड़ा, 3 काल बताए, और फिर दक्षिणायन, उत्तरायण, ये जो सब विभाग है ना, वो काल का विभाग है। ये काल कौन है, बोले कालोस्मि, मैं ही काल हूं। क्योंकि समय का जो विभाजन किया गया है, कल आपने सुना था, एक वो होता है जिसमें कोई विभाजन न हो, एक तत्व उसी को कहते हैं जिसमें बंटवारा न हो सके, एक ही है, उसमें कैसे बंटवारा करें। अब एक में बंटवारा नहीं हो सकता, इसलिए वो एति सर्वेषु पदार्थेषु एकः, तो वो काल है, काल। और अग्नि ही, अग्नि में वो सामर्थ है कि सबको भस्म कर देती, सबको भस्म करने वाली अग्नि है, वो ज्ञान की अग्नि भी वही है। भस्म सात क्रियतेर जो नौ, ए सारा कर्म जो भस्म हो जाता है, कर्म की राहें स्वरूप ही चीन है, स्वरूप का ज्ञान होने पर फिर कर्म नहीं रहते, कर्म का मतलब ही यही है कि कर्तापने का अभिमान अगर ना हो तो कर्म आपको बंधन में नहीं डालेगा, लेकिन वो ऐसा चक्कर पड़ जाता है, जैसा कल सुना था ना कि स्वार्थ रहित जीवन निष्काम बन जाए, महाभाष्यकार ने नमुने सूत्र में बताया था। एक बुढ़िया ने बड़ी भारी तपस्या की, बहुत दिन तक तपस्या की तो देवता खुश हो गया। जब देवता खुश हो गया उसने कहा कि मांगो वरदान, लेकिन एक मांगना कोई सा। वो बुढ़िया बहुत बूढ़ी हो गई थी, उसका विवाह भी नहीं हुआ था, उसने कहा एक ही मांगेंगे। बहुत गरीब थी बिचारी, मांग जांच खाती थी, तो कहा कि मैं अपने पोते को अपनी आंखों से हाथी में बैठ के सोने के कटोरा में दूध पिलावें। तो देवता घबरा गया, इतना लंबा ये तो 7 वरदान हो गए, हमने तो एक ही कहा थे, एक की जगह 7। तो इस स्वार्थ में व्यक्ति इतना पीड़ित हो जाता है कि जो चाहे सो मांगने लगा। निस्वार्थ अपना जिसमें कोई स्वार्थ न हो वो निष्काम होता है, और है उसी निष्काम करने से अंतःकरण शुद्ध होता है। अंतःकरण जब शुद्ध हो जाता है, निर्मल मन जन सोमोई पावा, तो निर्मल मन में अपने आप चमकने लगता है। जैसे निर्मल जल कहीं भरा हो तो आपका प्रतिबिंब स्पष्ट दिखाई देगा, और निर्मलता नहीं है, मिट्टी मिला पानी है, तो उसमें प्रतिबिंब मिट्टी मिला होने के कारण प्रतिबिंबित नहीं होगा। जैसे शीशा में मुंह दिखता है और दीवार में नहीं दिखता, और है दोनों पार्थिव, क्योंकि शीशा निर्मल है और दीवार निर्मल नहीं है, इसलिए वो नहीं दिखता। अब विचार ये करना है कि जो दिख रहा है वो दिख रहा है वो सत्य नहीं है, बस इस पर इतना विचार करना। वो अनात्म है, दृश्य है, जड़ है, तो कौन है? बोले वो जो दिख रहा है जिसकी बदौलत वो ही सत्य है, वो ही सत्य चिद आनंद मैं हूं, सच्चिदानंद। अगर ये निश्चय हो जाए बस काम बन जाए। असत्य के तुम ही आश्रय हो सत तुम, असत्य के तुम ही तुम्ही में विषय विष, तुम्ही में अमृत तुम्ही में। पिलाते हो जो सो पिए जा रहा हूँ, पिलाते जो कुछ दे रहे हो लिए जा रहा हूँ, जो कुछ तुम्ही में जीवन जिए जा रहा हूँ, तुम्ही में। बोलो कृष्ण भगवान की।
हरिओम। पूज्य महाराज जी के चरणों में प्रणाम। आज 17 जनवरी गुरुवार, महाराज जी ने बहुत अच्छी बात बताई कि दिए की तरह हमारा जीवन भी है। संसार की चक्की पर थोड़ा फर्क यह है कि संसार की चक्की पर जब हम भी घूमते हैं तो हमें थपथपाया जाता है, वह संस्कार की जो हाथ रहता है उससे हमें थपथपाया जाता है। उसी से हम प्रेमपुरी में आए और संतवाणी हमें टकोरा रोज मारती है कि भाई किस तरह का जीवन हमें जिया जाए। अब शांति पाठ होगा। हरिओम।
ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति।